देह ममता का नाश होवे प्रभो प्रभुता चित आए मान गुमान जाए चित ईर्ष्या दया गरीबी पाए नित ही प्रेम के रंग से जो जीवन रंगे मीत सफल होवे जग आवना सुन साध जनादि रीत इस मन को नर धीरज नाई जो अरब खरब धन पाए इस मन को संतोष न होवे जो चक्रवर्त राज कमाए एह मन त्रक्ते कभो न मिता जो पावे अति परिवारा इन प्रभु भगत और सेवा साधन नहीं बिन से मन गुबारा अंध कोप ये भ्रम है दुनिया सभी जीव दुख पाए इन सिमरे हरि नाम से सब नित निराशे जाए उठ जाग मुसाफर चेत तू सत्साजन कर तार ये जीवन होवे सुफला अंत पाए जयकार जीवन में पद जीवन परते सतगुरु वचन कमाए मंगत मिटे सब दूषना नित मंगल को पाए जीवन में पद जीवन परते सतगुरु वचन कमाए मंगत मिटे सब दूषना नित मंगल को पाए
कौनी है जितना भी उनका मार्गदर्शन है
मैं बार बार वो एक ही चीज समझाना चाह रहे हैं कि मन की दो गति होती है एक में मन की बहिर्गति अर्थात मन बाहर की ओर भागता है एक मन की अंतर्गति जब मन अंदर ईश्वर की ओर भागता है तो वास्तव में जो मन की बाहर की गति है इच्छा के कारण जिस संकल्प के कारण लक्ष्य के कारण जिस कामना के कारण मन मेरा संसार की ओर मुख करता है तो इसको जीव की दुर्गति कहा जाता है और जिस ज्ञान से जिस इच्छा से जिस लक्ष्य से मन अंदर की ओर जाने की कोशिश करता है उसको जीव की सदगति कहा जाता है। तो मन की जो बाहर गति है इसको सारे सत्पुरुष जिस काल से भी हम जानते हैं, शास्त्र लिखे गए जिस काल से भी हम जानते हैं कि सत्पुरुष प्रकट हुए, हमेशा से एक ही बात उन्होंने सिखाई कि मन को अंदर की ओर ले जाने की कोशिश करो, बाहर यदि इसको ले जाओगे तब जीव की दुर्गति होगी, अर्थात जीव बेचैनी की कमाई करके इस संसार से विदा होगा और साथ में स्वभाव कौन सा ले जाएगा, वो स्वभाव वो ले जाएगा जिसमें पांच अवगुण होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो मनुष्य बड़े से बड़े आपने देखे होंगे सेठ हैं, बड़े से बड़े योद्धा हैं, बड़े से बड़े दानी हैं, बड़े बड़े परिवारी हैं, बड़े बड़े अमीर हैं, बड़े बड़े गरीब हैं, लेकिन मन की दशा सबकी एक जैसी होती है। जिसका मन भी बाहर की ओर आशा करता है जीवन में सफलता की, उसकी जिंदगी एक दिन बर्बाद हो ही जाती है, अर्थात निराशा लेकर संसार से वो विदा होता है। इसलिए जब भी हम इस शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वाणी का श्रवण करते हैं या वाणी का स्वाध्याय करते हैं, तो हमको यही बात सीखनी होती है। जितने भी सत्पुरुष के ग्रंथ हैं, जितनी भी सत्पुरुष की वाणी है, जितना भी उनका मार्गदर्शन है, आप देखिए उसका एक ही निर्णय होता है, एक ही नतीजा निकलता है उसको जीवन में धारण करने का, कि मन मेरा अंदर की ओर जाने की कोशिश करने लगता है और जीवन की सफलता वो अंदर ही समझने लगता है। ये वाणी भी उसी ओर आपको गाइड कर रही है। ये वो वाणी प्रारंभ कहां से कर रहे हैं, देह ममता का नाश होवे, प्रभु प्रभुता चित्त आए, मान गुमान जाए चित्त ईर्खा, दया गरीबी पाए। देह ममता का नाश होवे, प्रभु प्रभुता चित्त आए। जब मैं इस विज्ञान के अनुसार या अध्यात्म विद्या के अनुसार चिंतन करता हूं, बुद्धि के निर्णय मैं बदलता हूं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, मेरी देह ममता का नाश। ममता कहते हैं मैं और मेरी, मैं क्या, मैं देह हूं और देह करके जिस वस्तुओं से मेरा संबंध है वो सब मेरी है। परिवार मेरा है, मकान मेरा है, पैसा मेरा है, व्यवसाय मेरा है, जिससे भी आपका संबंध है वो मेरी है और मैं देह हूं, इन दोनों को मिलके ये ममता का। तो देह ममता का नाश हो, प्रभु प्रभुता चित्त आए। जब मैं अध्यात्म विद्या सीखता हूं, गुरु के मार्गदर्शन को सीखता हूं, तब इस देह ममता का अर्थात मैं और मेरी का नाश होने लगता है और प्रभु प्रभुता चित्त आए। और चित्त में यही कहिए बुद्धि के अंदर प्रभु के का महत्व, प्रभु की प्रभुता बढ़ने लगती है और मेरा जो मन है वो अंदर प्रभु की याद करने की ओर अग्रसर होने लगता है। और मान गुमान जाए चित्त ईर्खा, दया गरीबी पाए। देखिए आम व्यक्ति जो संसारिक है उसके अंदर संसारी जीवन जीने पर जो सफलता मिलती है उसमें, उसके अंदर मान गुमान बढ़ जाता है। मान तो जानते ही हैं, देह करके सम्मान अर्जित करना, आशा करना, वो मान है आपका। गुमान क्या है, जो कुछ भी मैंने संसार में कमाई की है, चाहे नाम की कमाई की है, चाहे वस्तुओं की कमाई की है, चाहे पैसे की कमाई की है, उसका गुमान हो जाता है मेरे। और इसी कारण क्या होता है, चित्त के अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। बुद्धि के अंदर क्या होता है कि ईर्ष्या पैदा हो जाती है। दूसरे का सुख देखा तब ईर्ष्या, दूसरे का ज्यादा पैसा देखा तब ईर्ष्या, दूसरे का ऊंचा पद देखा तब ईर्ष्या, दूसरा कोई व्यक्ति ज्यादा सफल हो गया तब ईर्ष्या। तो ये ईर्ष्या आपके अंदर संसार की सफलता बढ़ा देती है और ईर्ष्या बेचैनी पैदा करती है, सब जानते हैं। ऐसा भी होता है कि दो दुकानदार पास में दुकान लिए बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है, इसके पास तो ग्राहक आते हैं मेरे पास आते नहीं, और यह इतनी ईर्ष्या बढ़ जाती है कि उसका कत्ल कर देता है। ईर्ष्या के कारण, उसको सहन ही नहीं होता। तो संसारी भाव में जीने में मन के अंदर क्या खिचड़ी पकती है विचार करके देखो। और जब मैं प्रभु के महत्व को समझता हूं तो उसका उल्टा हो जाता है, दया गरीबी पाए। ये दया कैसे आ जाती है? जो प्रभु का भक्त होता है, अध्यात्म विद्या को समझता है, सत्पुरुषों की तालीम को समझता है, तो उसके अंदर दया भाव आने लगता है। दया आमतौर पर हम जानते हैं कि किसी को दुखी देखा, भूखा देखा, दया आती है कि इसको खाना खिलाओ। तो वास्तव में दया कब आती है? जब आपको उसका मन दिखाई पड़ने लगता है। गुरु आपके मन की हालत को देखता है, आपके तन की हालत को नहीं देखता। आप गुरु के पास बैठिए तो सारे मन का निरीक्षण कर लेगा एक मिनट के, कि मन की मेरी क्या हालत है। तो गुरु मन की हालत देख कर ये निर्णय करता है कि संसार में आपको कुछ भी क्यों ना दे दिया जाए, कुछ भी आपको प्राप्त क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके मन की बेचैनी समाप्त नहीं हो सकती। ये सारे सब प्रश्नों का एक ही निर्णय। तो जब बताइए, जब आपको हर व्यक्ति मानसिक रूप से बेचैन नजर आ रहा है, पैसा उसके पास है, किसी के पास रूप है, किसी के पास भोग के बड़े साधन है, लेकिन मन की हालत उसकी बड़ी बेचैनी वाली, तो इस बेचैनी को जब मैं देखने लगता हूं तब क्या होता है कि फिर मेरे मन के अंदर जो है वो ईर्ष्या की बजाय उसके प्रति सेवा भाव आ जाता है। और जो कुछ भी मेरा करके मेरे पास, वो मैं प्रभु का समझने लगता हूं, ये प्रभु की देन है। और ये किसी के काम आ जाए, किसी का दुख दूर हो जाए, इसमें मैं इसका कैसे उपयोग करूं, ये भावना उसके अंदर आ जाती है। इसलिए उसके अंदर गरीबी आ जाती है। गरीबी का मतलब मेरा कुछ नहीं। तो देखिए कि जब मैं संसार की ओर देखता हूं तो मान गुमान और ईर्ष्या आती है, जब ईश्वर की ओर देखता हूं तो दया गरीबी आ जाती है। और उससे होता क्या है, फिर नित ही प्रेम के रंग से जो जीवन रंगे मीत, सफल होवे जग आवना सुन साध जना दीवी। तो क्या होता है कि नित ही प्रेम के रंग से जो जीवन रंगे मीत, वो प्रेम का रंग कौन सा होता है? प्रभु प्रेम रूप है। तो मन मेरा प्रभु की याद कर करके, बुद्धि मेरी सत्पुरुषों के निर्णय को सीख सीख के अंदर से निर्माण होने लगती है और संसार में वो दुख का दर्शन करने लगती है। यदि संसार में दुख नहीं होता तो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, आप इतिहास जानते हैं। सिकंदर को कहते हैं कि आखिर में वो खाली हाथ गया संसार से, उसने आदेश कर दिया कि जब मेरी कब्र बनाई जाए तो दोनों हाथ बाहर दिखा दिए जाएं, ताकि लोगों को पता लग जाए मैं संसार से खाली हाथ जा रहा हूं। लेकिन ये बोध यदि उसको वक्त रहते आ जाता तो चक्रवर्ती राजा बनने की कोशिश नहीं करता, भारत पे आक्रमण करने की कोशिश नहीं करता, वो संसार में दुखियों का दर्द दूर करने की कोशिश करता और प्रभु का भजन करता। लेकिन उसने संसार को जीतने का रास्ता अपनाया और अंत में जब बुद्धि उसके अंदर आई, सत बुद्धि आई, तब देखा मैं तो जीवन की बाजी हार चुका हूं, कुछ संसार से लेकर नहीं जा रहा। तो ये दुर्गति हमारी ना हो, इसीलिए वो कहते हैं कि नित ही प्रेम के रंग से जो जीवन रंगे मीत, सफल होवे जग आवना सुन साध जना की। जो सतगुरु है, जो सत्पुरुष है, जो भी संसार में आए हैं, उनकी क्या रीति रही है, क्या मेथड रहा है उनका जीने का, किस तरह का जीवन जीने की आकार उन्होंने आदेश किया है, किस तरह का जीवन सिखाया है हमको, मैंने वो सीखना होता है ताकि मेरा जीवन संसार में आकर सफल हो। अर्थात प्यासा मैं प्यास लेकर संसार में आया था और प्यास बुझाकर संसार से विदा हो, इसीलिए वो प्यास संसार की वस्तुओं से नहीं बुझती, वो प्रभु प्रेम से बुझती जो अंदर है, जो बिना किसी वस्तु के मिलता है। केवल प्रभु की याद करनी, वो अंतर्यामी है, मेरा जीवन रूप है, मेरी चेतना है, उसके बिना तो मैं जान ही नहीं सकता कुछ। जो मेरा जीवन है उसकी मैं जरूरत नहीं समझता, जो मेरी बेचैनी का स्रोत है उसके लिए जीवन लगा देता हूं, कैसे बुद्धि है मेरी। इसीलिए मानव जन्म बेहोशी में नहीं होश में रहकर जीने के लिए मिला है, ऐसी गलती ना कर। इसलिए वाणी आगे फिर आपको चेतावनी दे रही है, इस मन को नर धीरज नाई जो अरब खरब धन पाए, इस मन को संतोष न होवे जो चक्रवर्त राज कमाए। देखिए वाणी निर्णय कर रही है, इस मन को नर धीरज नाई, वो धीरज आ ही नहीं सकता तब जो अरब खरब धन पाए। यदि मन खुशी की तलाश बाहर कर रहा है देह के, तब अरब खरब धन पाकर भी उसके अंदर धैर्य नहीं आता। जिस मन में धैर्य ही ना हो वो कितना बेचैन होगा या आपको कितना बेचैन करेगा, इसकी कल्पना हम खुद ही कर सकते। अब बताइए वाणी का ये झूठ बोल रही है, अरब खरब धन होने के बाद भी राजाओं के मन के अंदर ये तृष्णा क्यों बनी रहती है कि पड़ोस का देश है इसको भी लूट के अपने कब्जे में कर लो, उनके लिए इच्छा क्यों उठ जाती है। इंग्लैंड कितना छोटा सा देश लेकिन पूरे विश्व पर उसने राज कर लिया, यहां तक कि अमेरिका तक पर राज कर आया, वहां भी इसका सूर्य चमकता। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है, वही इंग्लैंड सारी दुनिया से सिमट कर अपने छोटे से देश के अंदर आ गए। कहां गई वो शान शौकत, कहां गया वो रुतबा, कहां गए वो सुख जिसने भारत को भी 200 साल तक गुलाम बना के रखा। ऐसी धर्म प्रधान भारत की भूमि, धर्म प्रधान भारत के लोग, क्या हुआ भारत का। कारण यही है कि भारत के लोगों का भी मन बाहर भटकने लगा, अंदर का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया, तो बर्बादी तो होनी थी। मुगलों ने राज्य किया यहां पर, अंग्रेजों ने राज्य किया, क्या दुर्दशा है हमारी। इसलिए बात में तो ठीक है, इस मन को नर धीरज नाही जो अरब खरब धन पाए, इस मन को संतोष ना होवे जो चक्रवर्त राज हो। पूरे विश्व पर भी राज कर लो, इस मन को संतोष नहीं आता, धीरज नहीं आता। पड़ोस में ही देख लो ना, आज चाइना के पास पावर बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, नियत कहाँ है उसकी। मैं समुद्र पे कब्जा कर लू, मैं भारत भूमि पे कब्जा कर लू, चारों तरफ पैर फैला रहा। तो पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी युग का आप प्रमाण देख लीजिए, यही होता है। इसलिए मैं ज्यादा कमाई करके ज्यादा भोगराज इकट्ठा करने के बजाय मैं गुरु की बात सीखूं, मैं कम से कम में गुजारा करने की कला सीखूं, ताकि कम से कम मेरा मन बाहर जाए और अधिक से अधिक समय मन को अंदर प्रभु के पास ले जाने में खर्च हो। तो जीने की कला ये है, इससे मेरे जीवन में शांति आएगी। यदि बाहर मैंने निकल करके दौड़ लगाई तो जीवन विफल हो जाएगा। जैसे प्रकार के एग्जाम में जो आदमी नकल करके पास होता है वो पिछड़ा ही रह जाता है, दूसरों की नकल करके जो मैं प्रगति करता हूँ ये मेरा पिछड़ापन है, बुद्धि का पिछड़ापन है, मैंने पिछड़ना ही है। अर्थात आज जो मेरी मानसिक बेचैनी है, इस मानसिक बेचैनी को बढ़ाकर मैंने संसार से विदा होना। तो आगे कहते हैं, एह मन तृप्ते प्रभु न मीता जो पावे अति परिवारा, बिन प्रभु भगत और सेवा साधन नहीं बिन से मन गुमा। अब देखिए ये जो अगली बात आई, कि बिन प्रभु भगत और सेवा साधन नहीं, बिन से मन गुब्बारा। मन के अंदर गुब्बारा ये कौन सा है? जैसे कि आप कुछ चीज खाओ, एसिडिटी हो जाए तो क्या होता है? पेट के अंदर गुब्बार पैदा होता है, एसिडिटी से वायु से फूल जाता है। उसी प्रकार मन के अंदर ये वासना रूपी, इच्छा रूपी एसिडिटी बढ़ जाती है और मन आपका आपको बेचैन करने लगता है। तो इसका इलाज संसार में है ही नहीं, इसका इलाज सत्पुरुषों के पास, इसका इलाज ईश्वर के पास। इसलिए जब जीवन में मन के अंदर बेचैनी होती है, बेचैनी बढ़ती है, संसार के लक्ष्य बढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो याद रखिए अब भविष्य के मेरे दुख के दिन गहरे आने वाले हैं। जिसकी मानसिक बेचैनी बढ़ेगी तो उसकी बुद्धि जो है वो मन की गुलाम अधिक हो जाए, और जिसकी बुद्धि मन की गुलाम हो जाए तो बताइए वो ठीक निर्णय कब करेगा? जो बुद्धि मन के अधीन हो जाए, वासना के अधीन हो जाए, तृष्णा ईर्ष्या के अधीन हो जाए, वो बुद्धि ठिकाने कब लगेगी? तो कैसे ईश्वर के ज्ञान को सीखेगी? इसीलिए कि बिन प्रभु भगत और सेवा साधन नहीं, बिन से मन गुब्बार। मन का जो वासना का गुब्बार है ये कभी शांत नहीं होता जब तक मैं भक्ति का मार्ग सीखता नहीं और स्वार्थ के स्थान पर सेवा भाव मेरे जीवन में नहीं। मेरी दृष्टि ये होनी चाहिए कि दूसरे के मन की हालत में समझ पाऊं, दूसरे के तन की हालत में समझ पाऊं, जो कुछ भी मुझसे मदद हो सकती। मन की हालत कैसे ठीक करोगे आप? विचार के द्वारा। सत विचार से मन की हालत ठीक होगी, क्योंकि सत विचार से बुद्धि का निर्णय बदलता है। फिर बुद्धि का निर्णय जब सत निर्णय होता है, बुद्धि सतबुद्धि हो जाती है, तब बुद्धि की जो डायरेक्शन मन के लिए होती है वो तृष्णा को धीरे धीरे कम करने की ओर होती है, और जो संसारी बुद्धि वो तृष्णा को बढ़ाने के लिए होती है। इसलिए संसारी बुद्धि पतन का रास्ता है, आध्यात्मिक बुद्धि या सतबुद्धि ये उत्थान का रास्ता है। मैं धीरे धीरे प्रभु भक्ति या सिमरन की ओर जाता हूँ और स्वार्थ कर्म से वक्त बचाकर, स्वार्थ भोग से साधन बचाकर मैं दूसरे के कष्ट निवारण के लिए कोशिश करता हूँ, निष्काम भाव। सेवा और सिमरन ये दो ही रास्ते हैं जो मन के गुब्बार को शांत करते। आगे कह रहे हैं, अंधकूप ये भ्रम है दुनिया, तभी जीव दुख पाए, बिन सिमरे हरि नाम के तब नित्य निराशे जाए। ये अतिशयोक्ति नहीं है, वाणी बढ़ा चढ़ा के कोई बात नहीं कर रही है, वाणी बिल्कुल सत्य बोल रही है। मैंने क्योंकि वाणी पर कभी मनन नहीं किया इसलिए ये बात मैं वैसे ही देखता हूं कि बढ़ा चढ़ा के ये बात कही है, ये बात सत्य है बिल्कुल। फिर सुन लें, अंधकूप ये भ्रम है दुनिया, सभी जीव दुख पाए। जिस प्रकार अंधेरा कुआं हो उसमें कुछ नजर नहीं आता, उसी प्रकार ये वासना रूपी जो कुआं है, ये सारा संसार ये अंधेरी दुनिया है, इसमें जीव को कुछ नजर नहीं आता। किस वासना को धारण करके, किस इच्छा को धारण करके मेरी जिंदगी डूबने वाली है उसको पता ही नहीं लगता। इस बात को इच्छा पूर्ति में ही अपने जीवन की सफलता रखता है और अपनी खुशी देता है। इसीलिए कहते हैं कि अंधकूप ये भ्रम है दुनिया, तभी जीव दुख पाए। जब निर्णय ही बुद्धि का उल्टा है, कर्म ही आपका गलत है, तो आप दुख तो पाएंगे ही पाएंगे। कर्म का जो फाइनल नतीजा निकलेगा वो दुख ही निकलेगा। शराब पीने वाले को यदि शराब मिल जाए बड़ा खुश होता है, लेकिन उसका परिणाम बुद्धि पर पड़ता है और शरीर पर पड़ता है। बुद्धि मंद हो जाती है, उसके निर्णय उल्टे होने लगते हैं और तन रोगी होने लगता है। तो उसी प्रकार मैं जो देखा देखी करके वासना अपनी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो वासना पूर्ति के लिए जीता हूँ, उसमें सफलता को मैं अहंकार दृष्टि से देखता हूँ, अहंकार बढ़ा लेता हूँ, क्या होता है? जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए वो आखिरी बात कह रहे हैं, उठ जाग मुसाफर चेत तू, सत साधन करतार, ये जीवन होवे सुफला, अंत पाए जय का। तो मैं मुसाफिर मुसाफिर क्यों हूँ। मुसाफिर कुछ दिन के लिए यात्रा पर जाता है, कुछ समय के लिए धर्मशाला में ठहरता है, फिर आगे की यात्रा के लिए चल पड़ता है। उसी प्रकार ये जन्म जो मेरा इस संसार में हुआ है, ये कुछ समय के लिए हुआ है, मैं मुसाफिर हूँ। तो मुसाफिर की पहचान क्या? तो उसके दिमाग में एक लक्ष्य होता है। धर्मशाला में ठहरता जरूर है, एक रात के लिए, दो रात के लिए, लेकिन जिस कार्य के लिए वो आया है, मुसाफिर बना है, उस कार्य की तरफ उसका ध्यान हटता नहीं है, उसको करने के लिए ही वो धर्मशाला में ठहरा। उसी प्रकार मैं नित्य का मुसाफिर हूँ, जन्म में भी मुसाफिर हूँ मैं। मुसाफिर को मैं याद रखूं, मेरा लक्ष्य क्या है? परम संतोष की प्राप्ति, परम प्रेम की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति, ये मेरा लक्ष्य है। वो शांति, वो प्रेम मिलेगा कहाँ मुझे? संसार में नहीं है वो। ये तो आज तक शांति क्यों नहीं हुई? इतनी प्रगति संसार में हो ही नहीं सकता, संसार में वसी है ही नहीं। इसीलिए वो करतार में, जो इस देह के अंदर विराजमान। तो मेरा जो गुरु है, मैंने उसके जीवन को देखा या पढ़ा, तब मुझको पता लगा कि वो तो परम शांति में स्थित रहते थे, उन्हीं के शिष्य तरसते रहते थे, महाराज जी आप खोले फिर हमसे बात करें। तो बताइए, हमारे युग में ही, हमारे सामने ही वो सत्पुरुष हो गए, और अंदर कितनी शांति थी कि उनकी समाधि लग जाती थी, बाहर हम बैठे हैं हमारी याद भी नहीं आती थी, कैसी शांति है। तो मैं जग में मुसाफिर हूं, और मेरा जो सच्चा साजन है, सच्चा मालिक है, वो करतार है। क्यों मालिक है? क्योंकि उसी के कारण इस देह में जीवन है। कहते हैं ये जीवन सुफला होवे अंत पाए जयकार। तो ये जो वर्तमान जन्म है ये सफल हो जाता है, और अंत में मेरी ये संसार, ये समाज, ये परिवार मेरी जय जयकार करता है। कहता है इसने जीवन ठीक व्यतीत किया, इसने एक आदर्श जीवन व्यतीत किया, हमको भी प्रेरणा दे गया और अपना भी कल्याण करे। तो ये इसी संसार की कहनी है, और इसी संसार की देन है हमारे वास्ते, जब हम सही मार्ग जीवन में अपना लें। तो अंत में वाणी क्लोज हो रही है, जीवन में पद जीवन पर से सतगुरु वचन कमाए, मंगत मिटे सब दूषणा नित मंगल को पाए। जीवन में पद जीवन पर से, ये क्या बात? तो जीवन में अर्थात इस आयु में, जो आयु इस देह की है, जितनी भी मिली है, इसका नाम भी जीवन है। जीवन में पद जीवन पर से, तो जीवन पद कौन सा है? पद कहते हैं पोस्ट को, एक स्थिति को। हर व्यक्ति अपना एक एम बनाता है, ये पद भी उसको मिल जाए, इस स्थिति में मैं पहुंच जाऊं। तो वो पद जीवन पर से, वो जीवन पद कौन सा है? जहां से वो जीवन इस देह के अंदर आता है, जिसको हम जान कहते हैं। ये देह जान के कारण जीवित है ना, उस जान का नाम जीवन भी है। तो जीवन जिस स्रोत से इस देह के अंदर आता है, उसकी रक्षा करता है, उसको चलाता है, वो तो वो स्थान जीवन पद है। उसी को दसवां द्वार कहते हैं, उसी को मोक्ष स्थिति कहते हैं, उसी को प्रभु का निज घर कहते हैं। वो मेरे इस घर के अंदर वर्तमान में उपस्थित है, वो विराजमान है, वो मुझको प्राप्त है। मैं उस पद को प्राप्त कर सकता हूं यदि गुरु की बात मानकर मैं अपने जीवन को सिमरन और सेवा में खर्च करूं, और ज्ञान के अनुसार अपनी बुद्धि के निर्णय पर बदलूं, तभी मानव जीवन भी सफल होगा, और भविष्य में लोगों के लिए कि मैं आदर्श बनकर संसार में हमेशा याद किया। ओ ब्रह्म।